हमने बतलाया था रघुनाथ दास गोस्वामी का जो नियम था जो एकांतिक भाव और प्रेम नमित चित्त से श्रीमती राधिका जी की उपासना करते हैं, मैं उनके चरण जुगलों को धोकर और उस पवित्र जल को मस्तक में धारण करूंगा, उससे पान करता हूं यदि उनका है। इसके बाद परित्यक्त प्रयोजन समुदाय बाहम अतिथि दुरंधो निरंधन कदल भरवाधो निपति क्षीरम दंतय दस्व चतुर्भी अभिजात कृपया स्वयं गंधर्वा शपथम दिनांतम नय कुमार। इसके पहले कल या परसों मैंने कहा था जीव तत्व के संबंध में, जब भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान, तो उनके अंश को स्वांश कहते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उनमें से केवल चित्त शक्ति से संपन्न भगवान होते हैं और को आच्छादित करके रखते हैं, तो उसका आंशिक जो विकृत प्रतिफलन होता है उसको चिन्मात्र ब्रह्म कहते हैं। और जब भगवान अपनी सारी शक्तियों को आच्छादित कर केवल मात्र तथा शक्ति से युक्त होकर जब रहते हैं, तब उनका जो अंश होता है वो भी जीव अंश कहलाता है, वही जीव शक्ति। इसने क्या समझा नहीं समझा, हम तो बहुत देर से समझाया, बतलाओ तो बतलाओ क्या समझा। जीव तत्व के संबंध में बोल रहा
और आनंद आंशिक रूप से पूरा परिवर्तन के सभी को खा गए तो आंशिक।
इसलिए भगवान तो रहेंगे नहीं, किंतु अपनी जो वो शक्तियां हैं सभी सच्चिद आनंद सर्वशक्तिमत्ता और आनंदमयता सर्वज्ञता, ये सब को अच्छा देखा शिव भगवान रहेंगे और अपनी तटस्था शक्ति को परिपूर्ण रूप में रखते हैं अपने साथ में, उस समय उनका जो अंश होता है उसको इसको विधि नाम होगा। इसमें शक्ति तटस्था शक्ति की क्रिया अधिक रहती है, भगवान का तो थोड़ा थोड़ा रहेगा ही, भगवान में ज्ञान है, आनंद है और सत्ता है, वो तो जीव में रहेगी आंशिक रूप में, किंतु तटस्थता होने के कारण शक्ति का परिणाम इसको कहा जाता है, वस्तु का परिणाम नहीं होगा। स्वांति जो है वो वस्तु का परिणाम है, वस्तु के द्वारा, और जीव तत्व तटस्था शक्ति की परिणति है, किंतु भगवान उसमें रहते हैं। भगवान जीव तटस्था शक्ति का अंश लिए ये जीव स्वामी का विशेष
भगवान तो
रहता है, किंतु अपने को उस जैसे, अब जैसे देखो हमें दृष्टि शक्ति भी है, हमें प्यार भी है, हमारे अंदर में क्रोध भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं, किंतु जब क्रोध होता है तो अपने आनंद को, प्रसन्नता को और सबको हम दबा देते हैं, बल्कि क्रोध ही दबा देता है, और उसमें भयंकर क्रोध आ जाता है, केवल क्रोध वहां पर पड़ता है। इसलिए केवल क्रोध से यदि कोई हमारा विचार करेगी महाराज जी बड़े क्रोधी हैं, तो ये गलत हुआ है, क्योंकि उसने और चीजें तो अनुभव की नहीं, केवल क्रोध देखा, और जब स्नेह देखेगा ऐसा होगा, जब उनकी हंसी देखेगा, जब उनकी रसिकता देखेगा, उनका और सब गुण देखेगा, तो इसी प्रकार से भगवान में जो तटस्था शक्ति युक्त भगवान जो सत्यनारायण, उनका जो अंश होता है वो विभिन्न कहलाता है, और चूंकि शक्ति की यहाँ पर प्रधानता रहती है, इसलिए शक्ति का परिणाम जीव होगा, शक्ति का परिणाम वस्तु का परिणाम। अभी इतना ही समझो तो बहुत, फिर धीरे धीरे भजन करते 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 तटस्था शक्ति से जीव परिणत हुआ, इसलिए इसको विभिन्न माने शक्ति के, शक्ति कुछ भिन्न है भगवान, अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। जैसे आग है, आग और आग की शक्ति अलग भी है और भिन्न भी है। कैसे अलग है? आग यहाँ पर जलाओ, यहाँ पर जल गई आग, उसकी जो दाहिका शक्ति है वहां तक जा रही है, यदि अलग नहीं होती दाहिका शक्ति आग से, तो उसकी दाहिका शक्ति वहां पर जाकर के ताप दे रही है, ये कैसे होगा? फूल और फूल का गंध सुगंध वो अलग अलग है और एक भी है, फूल नहीं रहेगा तो सुगंध नहीं रहेगी, किंतु फूल वहां से वहां नहीं जाता है, उसकी सुगंध वहां तक चली जाती है, इसलिए कुछ अलग भी है, इसलिए इसको अचिंत कहा जाता है, इसकी चिंता नहीं की जाती, अचिंत। निम्बाकाचार्य ने जी को मन स्वाभाविक भेदाभेद माने, हम लोगों ने माना अचिंत भेद, स्वाभाविक आने से वो शक्ति शक्तिमान का परिणाम हो जाता है, शक्तिमान का परिणाम, वस्तु का परिणाम स्वाभाविक आने से, और शक्ति का परिणाम कहने से जीव परिणत हुई है। भगवान जैसे कैसे हैं उनसे नहीं, किंतु उनसे संबंधित है, भगवान से निकला किंतु भगवान की तटस्थ शक्ति परिणत होकर के भगवान की इच्छा से ऐसा सब महाप्रभु को छोड़कर के सब
महाप्रभु
शंकराचार्य ने खंडन
किया।
शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुछ सही हुआ ही नहीं, जीव है ही नहीं, एकदम है ही नहीं, उन्होंने कहा कि जीव ही सत्य है, जगत भी सत्य है, मध्वाचार्य हम लोग जितने भी सब आचार्य, शंकराचार्य ने कहा कि जीव और जगत है ही नहीं है, ये ब्रह्म में ऐसा भासता है, ऐसा भासता है, जीव है ही नहीं है, जगत ये सब बहुत तो है ही नहीं है, लेह नाना चल कुछ है ही नहीं है। तो काजी से ये जो देख रहा है दुनिया में बहुत से तो ये देख रहा है, शंकराचार्य जी ने कहा कि उसे एक भूत देख रहा है, स्वप्न मत देख रहा है। तो वैष्णव ने जीव गोस्वामी ने उनसे पूछा स्वप्न कौन देख रहा है, स्वप्न देखता कौन है। सब शंकराचार्य जी बगल झांकने लगे, सबको युक्ति बनाना पड़ा। तो यदि कहते हैं ये जीव है तो जीव वस्तु हो गया, तो सब गड़बड़ हो गया, ये तो जीव तो कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा जैसे ये ब्रह्म ही देखता है, तो ब्रह्म तो अपने से अलग कोई चीज होगी तब तो देखेगा, अपने तो कैसे देखेगा। इसलिए बैठो ने कहा कि ये जो देखने वाला है देखता है ये बहु, ये इतना बहुत देखा है, तो वो ब्रह्म को भी अज्ञान है जो इतना दिखता है उसको, उसको तो केवल अपने को देखना चाहिए। और देख करके कहता है किसको, जब दूसरा वस्तु आई नहीं है तो कहा किसको सुनाता है किसको। इसी तर्कों पर युक्तियों पर शंकराचार्य के विचार को, अजय शंकर जी ठीक है भगवत भक्त, उन्होंने भगवान को भगवान ने उनको आदेश दिया इन नास्तिकों से हमें बचाओ, बहुत भय चाहिए। इसलिए शंकर जी उन लोगों को भगवान से दूर रखने के लिए और जगत की सृष्टि उत्तरोत्तर होती रहे ना तो सभी तो मुक्त हो जाए, इसलिए शंकराचार्य के रूप में लिप्त होकर कल्पित माया शास्त्र और कल्पित मायावाद को वैष्णव में इतना देख क्यों ना, तो शंकर को झूठ मान लिया। किंतु रामानुज विष्णु स्वामी निम्बार्क जी और ये सब जितने हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर तो इनमें मत भेज क्यों, वो तो एक होना चाहिए। कहते हैं इन लोगों में भेद नहीं है, एक ही की बात होगा, केवल बद्ध जी के लिए सहज रूप में कैसे उस चीज को पाए धीरे धीरे समझ कर करके, इसलिए अपने उनके तारतम्य से उन्होंने ऐसी बातें को उन्होंने तीन लोगों में प्रश्न थे, उन्होंने ये कह दिया कि वही उपास्य है जी उसका उपास और जो करता है उपास, ये तीनों चीजें लिखते, इसलिए उनमें परस्पर ये दार्शनिक तत्व की भी आलोचना होनी चाहिए। पहले बहुत दिनों तक यही सब हुआ था, पहले हमने जब
धारणा
हमने आ गए तब पूरा तो होता नहीं है, पहले हमने दर्शन शास्त्र से ये लेकर के ये सब पहले बहुत दिन आ गए। किंतु आप लोगों को जानना चाहिए, ये सब नहीं जानेंगे तो भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी उसमें, ये सब जो कहा जा रहा है ये सब प्रतिष्ठा ही नहीं, ये जो चल रहा है ये पहले उसमें पहले निष्ठा हो उसको थोड़ा बहुत ध्यान लेना चाहिए। इसलिए दर्शन शास्त्र के ग्रंथ चैतन्य चैतामृत दर्शन शास्त्र है, साथ साथ में रस भी ग्रंथ है, सब कुछ है, उसको पढ़ो, जैव धर्म पढ़ो, वेदांत दर्शन कुछ कुछ पढ़ा जाए। जहाँ
भागवत
थोड़ा बोझने के लगाए नहीं रहेगा कि जीवन भर ऐसे उसको कहेगा कि ये देखो उठो चलो, अपना कुछ चेष्टा के लिए अपनी चेष्टा के लिए अपनी चेष्टा ही नहीं रहे सब कुछ ऐसा। रामानुज क्या कहते हैं मध्वा जाति का विचार क्या है, चैतन्य महाप्रभु की उन सब लोगों से विशेषता क्यों है, ये सबको विचार करके देखना। और नहीं तो केवल यही सब जो बातें जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना तो कोई ना कोई वो पूछ देगा और तुम लोग कैसे कोई उत्तर ही नहीं है, समझ नहीं सकते सहजिया लोगों में और हम लोगों में यही अंतर, वो केवल वही चोल देखते हैं और इधर छोड़ देते हैं, इसमें भक्त नीचे की पड़ता है। रघुनाथ दास के ये बताया है, प्रत्यक्ष प्रयोजन समुदाय बाघ पशु सपना दास को स्वामी जी बतला रहे हैं, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और बहुत दुर्भाग्य हूं, दुर्बुद्धि स्वरूप और तिलरूप सनातन इत्यादि उन लोगों ने हमको छोड़ दिया, परिचय से छोड़ करके हमें साधारण अवस्था है। हिताधिक ज्ञान सुन, हिताधिक का ज्ञान नहीं है, किसमें हित और किसमें अहित होता है, मुझको मर जाना चाहिए कि जीवित रहना चाहिए, अब मुझको कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। उनके प्रकट में भी अब तक जीवन धारण किए हुए हैं, और महादुख सागर में निमज्जित हो रहा है, अब इसलिए दांतों में तीन धारण करके तीनम दंत दृष्टवा दांतों में तीन रख करके अत्यंत कातर होकर के चतुरी मैंने कातर होकर के मैं श्रीमती राधिका जी के गंधर्वा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब मुझे इस जगत में रहा नहीं जाता, स्वपद नलिनांत अपने चरण कमल के अंत में अर्थात निकट में मैं तुम्हारा मुझे अपने चरणों के समीप क्यों चरणों के समीप ले लें? स्वरूप दामोदर जी वहां पर होंगे, किसी रूप में रूप गोस्वामी भी किसी न किसी रूप में
सब
मुक्त लीला में पहुंचे हैं, तो वहां पर सब उनकी लीला में सेवा में इसलिए जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने चरण प्रांतों में हमें बुला लीजिए। किसी के लिए विरह होता है, किसी को क्यों विरह होता है, जिससे चाहे लौकिक रूप में चाहे पारलौकिक रूप में यदि उसकी अज्ञानुभूति होती है कि हम मैं इससे बहुत उपकृत हूं, अब ऐसा मेरा उपकार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा, तो उसके लिए विरह होता है। प्रियता के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है, प्रियता की उपलब्धि होनी चाहिए, ये हमारा सबसे प्रिय। संसार वाले अधिकांश रूप में लौकिक भोग के ऊपर में प्रीति रुचि निर्भर करती है, जिससे अधिक भोगों की वस्तुएं मिलती हैं हमको सुख होता है, ऐसे लोगों के प्रति माता को पुत्र से या माता पिता का पुत्र से पुत्र का माता पिता के स्नेह होता है, स्त्री का पति के पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, इस जगत में मित्र का मित्र के प्रति, किसी स्वामी के प्रति किसी सेवक का भी हो सकता है। एक कोई सेवक जीवन के प्रथम काल में बच्चेपन से ही अपने मालिक के यहां नौकरी करता है और मालिक उसको अपने समान ही जानता है, उसकी शादी विवाह घर द्वार कराना सब समय उसका सब कुछ देख करके और उसको करता है, तो उसके लिए यदि मालिक चला जाएगा तो उसके लिए बड़ा विरह होता है। माता अपने पुत्र के विरह, पुत्र अपनी माता पिता के विरह, ये सब होता है। किंतु बहुत से लड़के आजकल तो या पहले भी देखा जाता है अपने पिता के माता को मार देते हैं, माता पिता अपने पुत्र को भी मार डालते हैं, और औरंगजेब इत्यादि का उदाहरण ये सब सर्वत्र है, ऐसा भी देखा जाता है। जिससे प्रीति होती है भोगों के आदान प्रदान से, ये लौकिक प्रीति के ऊपर में विराज नहीं करता। एक स्त्री अपने पति के लिए इतना क्यों पति से मर जाने के बाद क्यों, इसलिए उनके सामने में बड़े सुख से आराम से निर्भय होकर के गोरती जैसा चाहती थी, वो घर की मालिक नहीं रहती है, सब लोग उसका आदर करते हैं। और पति चले जाने के बाद में अब लड़के हैं वही, अब उनकी स्त्रियां धीरे धीरे मालिक होने लगती हैं, उस समय अब उनकी धीरे धीरे धीरे, कब तक वो पुत्र लोग उनको आदर करते हैं, जब तक कि अभी उनके हाथों में कुछ है रुपये पैसे उनके पति का दिया, जो वो भी निकाल नहीं है, बस अब माता पिता को रख देंगे, माता को या पिता को, बस वो मालिकाना उनकी स्त्रियों में आ जाए, वो उनका सुहाग हो जाए। इसलिए यहाँ पर देखें ये जितना जो कुछ है पारमार्थिक सुख या दुख की तुलना में इस जगत का सुख और दुख दोनों ही नगण्य है। परमात्मा इतना एक बहुमूल्य चीज है जिसकी हम लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते, ये जिनको जितना अनुभूति हुई है वो लोग समझते। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के, चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप दामोदर के, गुरु सनातन के कैसे प्रिय हैं और क्यों हैं अभी हम लोग नहीं समझे, उनकी अनुभूति थी इसलिए उनके लिए इतना तीरथ विराप कर रहे हैं।
कोरोना जब उपलब्धि है तब उनसे तीरथ,
करुणा की उपलब्धि नहीं होने से हमारे प्रति कितना करुणाशील से जो चीज नहीं देना था वो भी उन्होंने दे दिया। भक्ति से तो परम दुर्लभ और कोई चीज नहीं है, और भक्ति में भी उन्नत श्रेणी की जो भक्तियां हैं प्रेम और उसके संबंध में जो चीजें हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास को दिया। रघुनाथ का सबसे बड़ी कीमती चीज भी स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप, ये सबसे बड़ी उनकी चीज, ये महाप्रभु जी की असीम करुणा पर, जो महाप्रभु स्वयं उस बच्चे को नहीं दे सकते थे उनके संग में दे करके, ये सबसे बड़ी भारी करुणा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रश्न किया स्वरूप दामोदर से, ये महाप्रभु जी से कह दें कि मैं थोड़ा सा साधन और साधु के संबंध में जानना चाहता हूं, अपने महाप्रभु जी से नहीं कह सकते थे क्यों, नहीं महाप्रभु के प्रति उनका गौरव भाव कुछ
नहीं, महाप्रभु क्योंकि छोटे मन को थे बालक बोले बन गए,
बालक भी और महाप्रभु के प्रति उनका कुछ गौरव भाव था, जैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद और ये सबका महाप्रभु के प्रति अत्यंत घनिष्ठ भाव था, महाप्रभु इन लोगों से तो बहुत ज्यादा दूर रहते थे, स्नेह किंतु है प्रेमीय बात ठीक है, किंतु इन लोगों का उनके प्रति गौरव भाव था।
हमारा गौरव बुद्धि राघव भजन का गौरव बुद्धि का महाप्रभु
अभी निश्चित सिद्ध के का अभी तो नहीं दिखा रहे हैं ना, वो केवल साधन भजन का ही राजानुराग साधक भजन, साधक कवि भजन के साधक कवि अपने को दिखला रहे हैं, जब अपने सिद्ध स्वरूप से उनका चिंतन करते हैं तब वो दूसरी बात, वहां पर कोई मर्यादा और गौरव नहीं, तो महाप्रभु को प्रणाम क्यों करेंगे, प्रणाम करना क्या है। समय से सामृत में स्वरूप दामोदर जी ने राय रामानंद को, उन लोगों ने महाप्रभु को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, ये प्रार्थना की। राय रामानंद का हो सकता है गोदावरी के तट पर, इसके बाद में नहीं रहता उसे, और स्वरूप दामोदर का जो महाप्रभु को प्रणाम किया उनके बराबरी के रूप में उनको दे, क्योंकि रूप रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट हैं, ये सब बहुत जूनियर हैं इस जगत में आने में और उस, इसलिए इनका उनके प्रति गौरव, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनसे कहा कि जरा जिसे कृपा करके ये पूछ दीजिए हमारे तरफ से, ये मुझको क्या करना चाहिए, साधन भजन मेरे लिए क्या है। तो एक दिन सभी बैठे रहे थे, तो उसी में स्वरूप स्वरूप दामोदर जी बड़े प्रसन्न होकर के कहा, जैसे ये बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहता है, ये पूछता है हमारे माध्यम से आपसे, या आप अपने मुखारविंद से मेरे लिए क्या साधन और साध्य है, उसको क्या करना चाहिए, कुछ उपदेश। महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और डायरेक्ट उनसे कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी, देखो जिनके हाथों में तुमको मैंने सौंप दिया है, ये लोग हमसे अच्छी तरह से साधन और साध या जो कुछ तुम पूछना चाहते हो हमसे अधिक
जानते।
अच्छा महाप्रभु जी ने झूठ बोले होंगे कि सच बोले होंगे? क्या जी ओम प्रकाश जी, महाप्रभु जी ने ये कहा जैसे हमसे ये अधिक जानते, ये ठीक है कि गलत है? महाप्रभु जी ने कुछ वंचना तो किया ना उनका, अपने सब जानते हुए उनको कह दिया उनको। हाँ ऐसी बात नहीं, ऐसी बात सच में महाप्रभु ने तो कभी साधन किया ही नहीं। महाप्रभु कैसे साधन किया जाता है और कैसे उसको सहज रूप में कहेंगे महाप्रभु को ये सब चीज नहीं, वो तो रसिक रसिक शेखर है ना, वो सबसे अधिक, और वो है पीछे जाति बतला सकते हैं कुछ कुछ, क्योंकि जितना पुंखानुपुंख रूप में परिपूर्ण रूप में अनुभव के साथ में उनके लिए जितना कितना जरूरत है कैसा बतलाना चाहिए, ये सब काम करते। और स्वरूप दामोदर से भी अधिक बतलाएंगे रूप गोस्वामी के पास में, इसलिए स्वरूप दामोदर इत्यादि ने कोई ग्रंथ उतना नहीं लिखा, उन्होंने लिखे लिए तो एकदम हाई स्टैंडर्ड से अपनी भावना से ललिता विचाता की दृष्टि से वो जो कुछ होगा वो लिखेंगे, इसलिए उनकी सेवा करने वाली ये जो रूपमंजरी रूपी जो रूप गोस्वामी है रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी इस विषय को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने जबकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया और सबकी प्रेरणा करके उनके अंदर में इसको पूछा, तभी ये बतलाने का जो ढंग है हम गुरु महाराज जी के मुख से सुना, ये प्रभुपाद जी की वक्तताएं उच्च कोटि की दार्शनिक भाषा से होती है, दार्शनिक भाषा में वैज्ञानिक उसमें शब्द रहते, इसलिए सब साधारण लोग उनको नहीं समझ पाते। इंग्लैंड का कोई प्रोफेसर दर्शन का, वो भारतवर्ष में सब जगह घूम करके आया, बड़े बड़े विद्वानों से मिलकर, तो एल्बर्ट हॉल कलकत्ते में प्रभु आज जी का भाषण हो रहा था अंग्रेजी में, तो वो वहां पर गया सुनने के लिए, सब लोग सुन रहे थे, जब सभा समाप्त हो गई तो वो कह रहा कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर बहुत चमत्कार पूर्ण हुआ। तो गुरु जी ने उससे पूछा कि तुमको क्या चीज अच्छी लगी ये तो बतलाओ, तो यही तो बात है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। आज तक हम जिन विद्वानों से मिला हमसे अधिक जानने वाले नहीं मिले, उनको विचारों को तो मैं समझ सकता था और उनसे बातचीत करता था, इनका इतना उन्होंने जो कुछ बतलाया हमारे समझ में कख गगर एक भी नहीं, कुछ भी, यही तो बड़ी दिक्कत है।
प्रभुपाद जी ने जो ब्रह्म संहिता से टीका लिखा, लेकिन सवाल के समय भी आप तो कह रहे थे कि मैंने पहले मैं सोचा था मैं एक इंटेलिजेंट गायन हूँ, दो बार बड़ा समझ में नहीं है, आप जब ब्रह्म संहिता पढ़ा थी उसको पढ़े और थोड़ा समझ में आ रहा है।
वो तुम्हारे कृष्ण स्कूल का एक एक्सीलेंट बुद्धि का एक लड़का है, अब वहाँ का आचार्य है, तो ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी का अंग्रेजी है, अंग्रेजी उसकी व्याख्या की है, शब्द ऐसे ऐसे सब हैं समझना बड़ा भारी कर, समझ में साधारण लोगों को
दो बार पढ़
तो हमारे पास में आए, तो मैंने उसकी जब व्याख्या की तो वो मैं उनको दो चार बार पढ़ा, हमारे समझ में कुछ आया नहीं, आप यहाँ आकर के सरल रूप में इसको समझ पाए। हाँ तो प्रभुपाद जी को जी ये कहा इतनी उचित स्टैंडर्ड की उनकी भाषा और उनके शब्द और उनके दार्शनिक विचार होते हैं साधारण लोगों, तो अब प्रभुपाद जी की इच्छा होती थी कि भारती महाराज हैं, नहीं महाराज जी ऐसा वक्तृता करते हैं जो सब लोग हंसने लगते हैं। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम भी उनको हंसा दें, कभी कभी रुला दें। तो प्रभुपाद जी जब भाषक वैसा करते तो वो हंसते नहीं लोग थे, हंसने की बात करने पर भी नहीं हंसते थे। क्यों? इतना गंभीर साधारण हम लोग भी उनके भावों को समझ नहीं पाते। इसलिए स्वरूप दामोदर से उनके हाथों में सौंप दिया ये महाराज, महाप्रभु जी जब समझाएंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनके हाथों में दे दिया। साधन शास्त्र सत्य जो कुछ भी है सब सहज रीति में, और इसी के पीछे से उनको सहयोग दिया। जो चीजें उनके समझ में नहीं आई वो रूप सनातन के निकट आकर के सबके लिए। इसलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एक होंगे किंतु शिक्षा गुरु का महत्व इसीलिए कहा गया जो कुछ इनसे कुछ उनसे कुछ उनसे सबसे शिक्षा ले, तब वो शिक्षा कंप्लीट होगी। हमारे रामानुजाचार्य थे, वैसे तो बड़े धुरंधर विद्वान हैं, बहुत बड़े भारी विद्वान, और समस्त शास्त्रों को पढ़ लिख करके तब वो यमुनाचार्य से संन्यास लेना चाहते थे और उनसे खुद कुछ जानना चाहते थे। यमुनाचार्य पहले से ही इस चीज को जानते थे जो अंत में हमारे पास में आएगा और हमसे ही संन्यास लेगा, वो जानते थे। इसलिए अपने उसमें जब परलोक जाते हैं लोग तो वसीयत कर जाते हैं, वसीयत जानता है दिल जिसको करते हैं दिल करके जाते हैं, तो उन्होंने दिल कर दिया वसीयत किया कि हमारे अप्रकट के बाद में रामानुजाचार्य श्रीरंगम का आचार्य होगा और उनके संप्रदाय में किस संप्रदाय में वही आचार्य होंगे उनके जाने के बाद। तो रामानुजाचार्य समस्त शास्त्रों के विद्वान थे, अद्भुत उनकी मेधा थी। जब अपने गुरु जी के पास में उनसे संन्यास लेने जा रहे हैं तो उनका विमान आ रहा है, माने अप्रकट हो गए हैं। अप्रकट होने पर उनको कपड़े लेकर के रथ बना करके उनको पासी में ताम्रपर्णी या कौन नदी है उसमें उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे थे। हजारों आदमी रोते हुए उनके पीछे आ रहे हैं। पास जब ये जा रहे थे तो बीच में उनको भेंट हुई, क्या हुआ कौन है? अरे यमुनाचार्य का वो अप्रकट हो गए, अब रोने लग गए जो उनसे भेंट नहीं हुई। मैं उनसे डायरेक्ट रूप में उपदेश और ये सब लेना चाहता था, वो तो हुआ नहीं, रोने लगे और बोले जो अच्छा थोड़ा सा हमको दर्शन करा दो और उनके कपड़े को हटा दो। तो कपड़ा हटा दे दिया, उनको नीचे उतार करके उनको दर्शन कराया गया। तो उनकी ये तीन अंगुलियां, एक अंगुली ऐसे थी और तीन अंगुली ऐसे थी। बढ़ते भाई भाई ये इस हाथ का तो वो सब ठीक है, ये इसमें क्यों ऐसा हो गया? लोगों से पूछा तो कोई नहीं बतला था। फिर उन्होंने चिंतन करके बोले जो मैं त्रिदंड संज्ञा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इनके सामने मैं त्रिदंड, बस एक अंगुली जो ऐसी थी वो ऐसे हो गई। वेदांत का मैं श्री भास्कर लक्ष्मी जी के अनुसार में और हमारे पूर्व जो वैष्णव लोग हैं उनके अनुसार में करेंगे, क्योंकि मायावाद भास्कर चारों तरफ में प्रचलित हो चुके लोगों का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए मैं इस जरूरी काम को जरूर करूँगा। तब साथ ही साथ एक और उंगली खुल गई थी, अभी एक था। फिर उन्होंने कहा मैं सब शास्त्रों को प्रकाशित करूं जैसे कि वैष्णव धर्म का प्रचार है, बस उनकी योजना बस वहीं पर उन्होंने त्रिदंड संन्यास लिया। अब सब लोग कहने लगे कि आप उनका अपत्र संस्कार हुआ, किंतु फिर हुआ कि उनकी गद्दी पर आज भी गुरु की गद्दी या राज सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में अंततः उसका नॉमिनेशन हो जाना चाहिए, साथ साथ संस्कार कुछ होना चाहिए, तो गद्दी तो खाली नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसे वसीयत है कि उनको उनके बाद में आचार्य कर दिया जाए, इसलिए आप आचार्य होना चाहते हैं, कभी ऐसे नहीं रहना। उनके 12-14 प्रधान प्रधान शिष्य थे, शैलपूर्ण है, उनका नाम भी चल रहा था, किंतु नहीं दे रहा होगा संन्यास इत्यादि, उनके लिए बंद हो गया होगा, क्या हुआ ये तो नहीं, किंतु ऐसे वो एक एक शिष्य के पास में गए, चाहे गृहस्थ हो और चाहे जो ग्रंथक हो, उनका विद्वान और सिद्धांत विद जिनको सभी लोग मानते हैं, ऐसे सब लोगों के पास में गए और उनके घर पर उनकी सेवा करके उनसे सब उपदेशों को एक के बाद में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबको सब दे, क्योंकि अलग अलग उनके शिष्यों के पास में अलग अलग तरह तरह के उपदेश हैं, किसी को एक अच्छा लगा है, किसी को एक अच्छा लगा है उसमें प्रतिष्ठित है, इसलिए सबसे शिक्षा लेकर के जब उनकी शिक्षा परिपूर्ण हो गई और सब लोगों ने अनुमोदन किया कि नहीं ये योग्य है, क्योंकि उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कर दिया, यदि वो उसी समय बैठ जाते तो वो जैसे आजकल होता है, इसे सेवा के द्वारा संतुष्ट किया, उनका सिद्धांत सब जान लिया, वो लोग प्रसन्न होकर के कहा नहीं ये योग्य व्यक्ति, उनको भी परीक्षा करके दिया और इसके बाद में जब अनुमोदन करके दिया तो 108 वर्ष की उम्र तक अत्यंत वृद्ध अत्यंत लंबी आयु थी उन्होंने दे सकता। इसलिए इसी संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत में उत्तर भारत में सर्वत्र, इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक होने पर भी शिक्षा गुरु तब, हाँ उसमें भी देखा जाइए देखा जाना चाहिए कि हमारे मन के अनुकूल हमारे ऊपर में कृपा करने वाले और मैं जिस विषय को चाहता हूँ उस विषय में कौन वैसे अभिज्ञ, और दीक्षा गुरु के अनुकूल भी होना चाहिए,
दीक्षा गुरु
अनुकूल दोनों अनुकूल माने एक भाव मजार का होना चाहिए, तब वो ठीक रहता है, और नहीं तो माने इसको इसलिए कहा गया दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक ही कोटि के वैष्णव हो तब वो ऐसा संभव, और नहीं तो विरोध रहेगा ही, इसलिए ऐसे दीक्षा गुरु वो कृष्ण के स्वरूप माने गए, दीक्षा गुरु के भी जाना कृष्ण का स्वरूप, आप शिक्षा
गुरु के
जाना कृष्ण वो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो विरोध होकर के बस सब चौपट हो जाएगा, विशेष करके लौकिकता के दृष्टि से ये सब नहीं कहा गया, इसीलिए कहते हैं स्वरूप नाम तो इनके क्या है, महाप्रभु के क्या है शिक्षा गुरु किसी शिक्षम और रघुनाथ दास के स्वामी, रघुनाथ दास का स्वामी क्या है हमारे ये क्या है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट वो भी शिक्षा उनके शिक्षा गुरु, क्योंकि इनसे पहले आए, बल्कि जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को आदर करके अपना परस्पर बराबर का मानते, इसलिए ये बता रहे हैं कि मेरे जो शिक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु चले गए, जबकि वो उनके इष्ट देव आराध्य देव हैं, और वो भी साधारण आराध्य नहीं, वो कृष्ण हैं, किंतु राधा जी का भाव और अंग कांति लेकर के जगत ने अपना विशिष्ट प्रेम देने के लिए जो आज से एक कल्प पहले चैतन्य महाप्रभु अभिभूत होकर के देने के लिए ऐसी वेश किमती थी उन्नत उन्नतरात करुण आवते न करो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसान, उन्नत उज्ज्वल रसान पर खेद मत देना नहीं तो गड़बड़ अर्थ हो जाए, उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, इस चीज को समझना अच्छी तरह से, सब तो नहीं समझेंगे किंतु जिनको है उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करने के लिए राधा जी के भाव को कहते हैं, गोपियों के भाव को
उन्नत।
ये कभी भी देवी की चीज नहीं है, ये तो महाभाव की स्थिति है। राधा या प्रणय मजना से इसलिए ये देने की, इसको देने के लिए उन्नत उज्ज्वल नहीं आए, बल्कि उन्नत उज्ज्वल रसायन उसकी शोभा देने के लिए, लता को देने के लिए नहीं आए। लताओं में जो फूल खिले हुए हैं उन फूलों में से लेकर के दूसरों को दिया, और लता को उखाड़ करके दे देगा तो क्या होगा? वो देने के लिए, इसलिए उसके फूल हैं, फल हैं, ये दूसरों को दिया। लता भी सुरक्षित रहे, पुनः फूले और फले, और उसका वितरण भी कर दिया गया। इसे चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति उसकी शोभा देने के लिए। अतः ये रूप गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो भाव है यही देने के लिए, राधा जी का भाव देने के लिए नहीं, पर उनका स्वागत करने के लिए आए। तो उसी को कह रहे हैं, वो मेरा जैसा दुर्बुद्धि और ज्ञान शून्य व्यक्ति कोई नहीं है। अब मुझे अनुभूति हो रही है, महाप्रभु जी रहते मैंने इसका विचार नहीं किया, स्वरूप दामोदर सर रहते मैंने ये सब विचार नहीं किया, उनसे ये सब सीखा। कुछ कुछ पूछा जा सकता है साधु को और सनातन गोस्वामी से, वो लोग भी उन्हें छोड़ करके चले। अब मैं क्या, अब मैं असहाय और दुखी, इसी चीज को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अब तो राधा जी के पिता के बिना और कोई व्यक्ति नहीं, हाँ तो वो रघुनाथ दास कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उसने रामानंद डायलॉग में बतलाया, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं और कोई दूसरा दुख नहीं है। हम लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए तो होता नहीं है। संसारिक लोग या हम लोग अभी साधन के क्षेत्र में, गुरु जी के लिए, गुरु जी चले गए तो विरह तो कुछ हुआ नहीं। अभी भी गुरु जी की महिमा वर्णन करके जो हमको संसार समुद्र से पकड़ करके ले आए और हमको इधर में जो दिया, आज जगत की लोग पूजा कर रहे हैं हम लोगों की, उनका ऋण हमें और उनकी करुणा हमको याद नहीं है, स्मरण नहीं, समझ नहीं पाते उनके ऊपर। हाँ हो सकता है कि एक दो जन्मों के बाद भी साधन करके जिसमें हृदय में सर्व शक्ति की वृत्ति आएगी ना, कोई भाव आएगा विद्युत, हो सकता है कि उस समय में हम लोग कुछ समझे। इनके अंदर में तो वो चीजें हैं इसलिए समझ रहे हैं। अभी जो चीज दिया, एक बंदर को एक चिंतामणि दे दो, क्या करेगा? वो दांत काटेगा, आपका जूता लेकर के भागेगा, आपके थैली लेकर के चला गया, और थैली में सोने का हार है, बैग होता है इसलिए आई लेकर के जा रही थी, और उसके बैग को उसने फिट करके और उसमें हीरे जवाहरात के बस ये सब स्वर्ण अलंकार और उसको लेकर के पेड़ पर चढ़ गया और दांत दिखला रहा है। किसी ने कहा कि हाय हाय क्या करें, कहाँ निकल के भाग जाएगा? लोगों से कहा, लोगों ने क्या किया, एक रोटी का टुकड़ा ले आए, एक रोटी या एक फल संतरा या कोई दिखेगा, और उसको ऊपर में दिखला करके छोड़ दिया। और बंदर क्या करता है, उस महामूल्यवान थैली को फेंक करके असफल, वो सोचता है कि हमारा प्राप्ति हमको मिल गया, हमारा काम निकल गया, हमारा स्वास्थ्य हो। और उसने क्या किया, उसने छोटी सी चीज देकर के अपना महामूल्य अर्थवान वस्तु को, ऐसे हम लोग अपनी रिश्ते की है ठीक ऐसे ही, ये तो कहते हैं बंदर को जरूरत नहीं है, वैसे हम बंदर अभी हैं, हमको अभी संसारिक वस्तुओं की, रुपया पैसा प्रतिष्ठा ये सब की अभी जरूरत है, संसारिक भोग की जरूरत है, इसलिए हम लोग बंदर कभी गए नहीं। जब तक स्वरूप शक्ति की वृत्ति नहीं आएगी, वैष्णव की ऐसी कृपा नहीं होगी, उस चीज को हम लोग समझने के लिए अपारक हैं, नहीं समझ सकते। इसीलिए तो हम लोग बड़े आनंद के साथ में घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों में खूब भेज भेज कर रहे हैं, यहाँ पर भी रात में खूब अच्छी तरह से खाया पिया और बच्चों ने खा रहे हैं। ये महामूल्यवान समय हमारा नष्ट यो ही हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है। न गुरु के प्रति ऐसी आसक्ति है, अंत पर थोड़ी सी भी आसक्ति, जैसे कि गुरु में रहते और आरुणी और ये सब अभिमन अब उपमन्यु इत्यादि का देखा जाता है, वैसा भी तो नहीं है। ऐसी विभक्ति नहीं क्या रघुनाथ दास गोस्वामी का, जैसा अपने गुरुओं के प्रति इन लोगों के प्रति अभी हो रहा है, उन्होंने व्यक्त किया। हम लोगों में ऐसा हो कभी गुरु जी की महिमा किसी से कहते हैं कि गुरु जी ऐसे हैं, बड़ी कृपा करके हमको ऐसा कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है प्रतिदिन अपने गुरु जी की कम से कम थोड़ी सी महिमा का वर्णन, हम लोग स्मरण नहीं करते, सो करके उठकर न जाने क्या क्या चीजें याद आती है, कतब में तो हृदय में लगता नहीं। एक तितली है ना, उसका पंख पकड़ो तो क्या होगा, कोई उसका पराग होता है वो लग जाएगा, किंतु गुरु जी के चरणों का पराग हम लोग के हृदय में कभी क्यों नहीं लगता, उनकी मन में नहीं समझते गुरु जी ने हमको क्या दिया। ऐसा परमात्मा गुरु जी को देखो, हम लोग अपने गुरु जी का नाम लेकर घंटों विलाप करते रहते, जिग जी बन जाती, गदगद हो जाते, अपने नहीं बोल सकते, बोल रहे हैं और उनका गुणानुवाद है, बस बोल नहीं सके। तो हम अभी नए हम लोग आए हैं, हम लोग रहे इतना आंखें भरी हुई, ऐसा हम लोगों ने कहीं देखा नहीं थी। तो गुरु के प्रति गुरु ऐसे हों और उनका शिष्य भी ऐसा, तो ऐसा तो इसलिए इनको यह उपलब्धि हो रही है। क्या चीज दिया,